एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत बड़ी और कह सकती हूँ कि एक दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं।
अच्छा।
हाँ, एक ऐसा पद जिसे बनाते वक्त ये डर था कि कहीं ये एक राजा की कुर्सी ना बन जाए, और इसीलिए उसे बहुत सारी सीमाओं में बांधा गया।
लेकिन आज वही पद दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद माना जाता है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की।
और ये सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं है। व्हाइट हाउस में बैठा व्यक्ति जो भी फैसले लेता है उसका असर हम सब पर पड़ता है,
चाहे वो व्यापार हो, तकनीक हो या
फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
तो इस पद की असली ताकत और सीमाओं को समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, है ना?
बिल्कुल।
और इस सफर में हमारी गाइड बनेगी माइकल नेल्सन की किताब द प्रेसिडेंसी। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं और समझते हैं कि कागज पर बना एक सीमित पद हकीकत में इतनी बेहिसाब शक्ति का केंद्र कैसे बन गया।
चलिए शुरू करते हैं।
किताब की गहराइयों में जाने से पहले लेखक को जानना जरूरी है, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
तो ये जो माइकल नेल्सन है, ये कोई पत्रकार या टीवी पर आने वाले राजनीतिक पंडित नहीं है, वो एक अकादमिक है, एक राजनीति विज्ञानी। अब जब मैं अकादमिक कहती हूँ तो कई लोगों को लगता है कि किताब बहुत भारी भरकम और उबाऊ होगी। क्या ये डर सही है?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन देखिए, यही बात माइकल नेल्सन को खास बनाती है।
कैसे?
वो रॉड्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मिलर सेंटर से भी जुड़े हैं, जो सिर्फ राष्ट्रपति पद के अध्ययन के लिए ही बना है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो मुश्किल से मुश्किल राजनीतिक सिद्धांतों को भी एक कहानी की तरह समझाते हैं। वो सरल बनाते हैं लेकिन सतही नहीं।
अच्छा, मतलब वो विषय की गहराई से कोई समझौता नहीं करते।
बिल्कुल नहीं। वो एक ही साथ संवैधानिक डिजाइन, ऐतिहासिक विकास, संस्थागत नियम और राष्ट्रपति की व्यक्तिगत जीवनी, इन सभी पहलुओं को एक साथ बुनकर चलते हैं,
जिससे हमें एक पूरी तस्वीर मिलती है।
हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उन्हें इस विषय पर एक ऐसा भरोसेमंद मार्गदर्शक माना जाता है जो हमें एक गहरी और स्पष्ट समझ देता है।
तो चलिए देखते हैं कि ये मार्गदर्शक हमें कहाँ ले जाता है, किताब का मुख्य सार क्या है, ये किस बारे में है।
संक्षेप में कहें तो द प्रेसिडेंसी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की पूरी जन्म कुंडली है।
जन्म कुंडली?
हाँ, मतलब 1787 में जब संविधान सभा में इसकी कल्पना की गई थी, तब से लेकर आज के आधुनिक रूप तक। ये हमें दिखाती है कि ये पद कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित चीज की तरह है जो समय के साथ बदला है।
ये तो एक बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। मतलब संस्थापकों ने जो मूल डिजाइन बनाया था,
हाँ,
वो वैसा का वैसा नहीं रहा।
बिल्कुल नहीं। नेल्सन दिखाते हैं कि कैसे उस मूल डिजाइन को ऐतिहासिक संकटों जैसे गृह युद्ध या महामंदी और महत्वाकांक्षी नेताओं ने अपनी जरूरतों के हिसाब से खींचा, मोड़ा और कभी कभी तोड़ा भी।
अच्छा।
और किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो एक गहरे विरोधाभास पर टिका है।
वो क्या है?
एक तरफ है संविधान में लिखी सीमित शक्तियां और दूसरी तरफ है जनता और दुनिया की लगभग एक राजा जैसी उम्मीदें। राष्ट्रपति से हर समस्या का हल निकालने की उम्मीद की जाती है
और असलियत में उनके हाथ बंधे होते हैं, तो सारा तनाव यहीं से शुरू होता है।
ठीक वहीं से। नेल्सन इसी तनाव की पड़ताल करते हैं और समझाते हैं कि इस पद की शक्ति को सिर्फ मजबूत या कमजोर कहकर नहीं समझा जा सकता। ये मामला उससे कहीं ज्यादा जटिल है।
तो ठीक है, पहेली का मंच तैयार हो चुका है, अब इसके टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। नेल्सन शुरुआत करते हैं पद के निर्माण से। आपने कहा कि संस्थापक डरे हुए थे, किस बात का डर था उन्हें?
उन्हें डर था एक अमरीकी राजा बनाने का। देखिए, वो अभी अभी ब्रिटिश राजशाही से आजाद हुए थे और किसी भी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताकत नहीं देना चाहते थे।
स्वाभाविक है।
पर साथ ही उन्हें ये भी पता था कि देश चलाने के लिए एक ऊर्जावान और फैसले लेने वाला नेता तो चाहिए जो संकट के समय देश को संभाल सके।
तो ये तो बड़ी दुविधा हो गई, एक शक्तिशाली नेता चाहिए भी और नहीं भी, तो इसका हल कैसे निकाला उन्होंने?
और इस दुविधा से एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक हल निकला, जिसे नेल्सन रचनात्मक अस्पष्टता यानी क्रिएटिव एम्बिग्विटी कहते हैं।
रचनात्मक अस्पष्टता।
हाँ, संस्थापकों ने संविधान में जानबूझकर राष्ट्रपति की शक्तियों को थोड़ा धुंधला, थोड़ा अस्पष्ट छोड़ दिया। अनुच्छेद 2 में बस इतना लिखा है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसका क्या मतलब है, ये उन्होंने भविष्य पर छोड़ दिया।
वाह, ये तो ऐसा हुआ मानो उन्होंने एक घर की नींव तो बना दी, पर दीवारों की ऊंचाई और कमरों का नक्शा भविष्य के राष्ट्रपतियों पर छोड़ दिया कि तुम अपनी जरूरत के हिसाब से बना लेना।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी एक डिजाइन चॉइस ने भविष्य में लिंकन को देश बचाने के लिए असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने की छूट दी और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक विश्व शक्ति बनाने की गुंजाइश दी।
अच्छा, तो यहीं से उस विरोधाभास की नींव पड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे।
बिल्कुल।
तो संविधान ने एक अस्पष्ट खाका तो बना दिया, लेकिन असल में इस पद को आकार किसने दिया? यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके ऐतिहासिक विकास को देखते हैं। क्या शुरुआती राष्ट्रपति आज के राष्ट्रपतियों जितने ही शक्तिशाली थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। निल्सन बताते हैं कि 19वीं सदी में ये पद ज्यादातर निष्क्रिय था।
निष्क्रिय मतलब एक क्लर्क की तरह?
बिल्कुल। उस दौर के राष्ट्रपति खुद को एक प्रशासक की तरह देखते थे जिनका काम बस ये था कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कर दें।
तो नीति बनाने का काम पूरी तरह से कांग्रेस का था।
हाँ, पूरी तरह से।
तो फिर ये बदलाव कब और कैसे शुरू हुआ? जरूर कुछ ऐसे राष्ट्रपति आए होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि बस अब बहुत हुआ ये क्लर्क का काम।
हाँ, कुछ ऐसे ही थे। पहले बड़े अपवाद थे एंड्रयू जैक्सन, जिन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का नहीं बल्कि सीधे जनता का प्रतिनिधि हूँ।
अच्छा।
लेकिन असली भूचाल तब आया जब अब्राहम लिंकन आए। गृह युद्ध के दौरान उन्होंने देश को बचाने के लिए युद्ध शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
जैसे कि
उन्होंने संविधान के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से निलंबित तक कर दिया। उन्होंने दिखाया कि संकट के समय ये पद कितना शक्तिशाली हो सकता है।
और यहीं से आधुनिक राष्ट्रपति पद की नींव पड़नी शुरू हुई होगी।
सही कहा। असली मोड़ आया 20वीं सदी की शुरुआत में। थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद को एक बुली पल्पिट की तरह इस्तेमाल किया।
बुली पल्पिट? इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि उन्होंने पहली बार व्हाइट हाउस को एक मंच की तरह इस्तेमाल किया जहां से वो सीधे जनता से बात करते थे, मीडिया के जरिए अपनी राय बनाते थे और फिर उस जनमत का इस्तेमाल कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए करते थे।
और फिर आए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यानी FDR, जिनका नाम तो
जिनका नाम इस कहानी में बार बार आता है। FDR ने इस पद को हमेशा के लिए बदल दिया।
कैसे?
महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे दोहरे संकटों का सामना करते हुए उन्होंने न केवल सरकार का आकार और दखल बढ़ाया बल्कि सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकारी कार्यालय EOP बनाया।
एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि FDR से पहले राष्ट्रपति के पास अपना कोई बड़ा स्टाफ नहीं था? आज तो व्हाइट हाउस में सैकड़ों लोग काम करते हैं, ये बदलाव तो जबरदस्त है।
बिल्कुल। FDR से पहले राष्ट्रपति के पास कुछ सहायकों के अलावा कोई खास टीम नहीं होती थी। EOP के बनने के बाद राष्ट्रपति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे बल्कि एक विशाल और शक्तिशाली संगठन बन गए
जिसके पास अपनी सेना, अपने विशेषज्ञ और अपनी नौकरशाही थी।
ठीक है, यहीं से आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्रपति पद का जन्म हुआ।
ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी संस्था है। तो किताब में नेल्सन इनकी शक्तियों को कैसे समझाते हैं?
नेल्सन शक्तियों को तीन मुख्य भूमिकाओं में बांटते हैं। पहली है मुख्य कार्यकारी,
चीफ एग्जीक्यूटिव,
यानी सरकार का बॉस।
कागज पर तो हाँ, लेकिन हकीकत में उन्हें लाखों कर्मचारियों वाली एक विशाल नौकरशाही को नियंत्रित करना होता है जो अक्सर अपनी ही धुन में चलती है।
तो उसे काबू में कैसे करते हैं?
इसके लिए राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो बिना कांग्रेस की मंजूरी के जारी किए गए निर्देश होते हैं।
और दूसरी भूमिका, मुझे लगता है ये विदेश नीति से जुड़ी होगी।
हाँ, और शायद यही उनकी सबसे शक्तिशाली भूमिका है, कमांडर इन चीफ और मुख्य राजनयिक की।
अच्छा, यहाँ नेल्सन दो राष्ट्रपति पद की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा समझाते हैं। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति असल में दो अलग अलग नौकरियां कर रहा है।
दो नौकरियां, ये कैसे?
देखिए, विदेश नीति के राष्ट्रपति के तौर पर वो कमांडर इन चीफ हैं और उन्हें लगभग एक राजा जैसी आजादी मिलती है। जैसे किसी देश पर हमला करने का आदेश देना
जिसमें कांग्रेस उन्हें ज्यादा नहीं रोक पाती।
बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो घरेलू मुद्दों पर आते हैं जैसे स्वास्थ्य सेवा या टैक्स सुधार, वो दूसरे राष्ट्रपति बन जाते हैं जिन्हें कांग्रेस और अदालतों से हर कदम पर लड़ना पड़ता है।
ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। मतलब विदेश में शेर और देश में थोड़ी बंधी हुई बिल्ली,
आप ऐसा कह सकती हैं। और तीसरी भूमिका इसी से जुड़ी है, मुख्य कानून निर्माता,
चीफ लेजिस्लेटर।
लेकिन कानून तो कांग्रेस बनाती है ना? हाँ, संविधान यही कहता है, लेकिन हकीकत में आज कोई भी बड़ा कानून व्हाइट हाउस की पहल के बिना नहीं बनता।
और राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय एजेंडा तय करते हैं, बजट पेश करते हैं और अपने वीटो की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी कानून को रोक सकते हैं।
मतलब वीटो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि मोल भाव का एक साधन भी है।
बिल्कुल।
और आखिर में ये सब इस पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है और वो शासन कैसे करता है।
इस प्रक्रिया में क्या बड़े बदलाव आए हैं?
बहुत बड़े। निल्सन बताते हैं कि चुनाव प्रक्रिया अब पूरी तरह से बदल गई है। पहले पार्टियां तय करती थीं कि उम्मीदवार कौन होगा, अब उम्मीदवार सीधे जनता के बीच से आते हैं,
प्राइमरी चुनावों के जरिए।
हाँ, और इसी से बयानबाजी वाले राष्ट्रपति पद का जन्म हुआ है। आज के राष्ट्रपति बंद कमरों में सौदेबाजी करके नहीं, बल्कि सीधे जनता से अपील करके, रैलियां करके और अब तो सोशल मीडिया के जरिए शासन करते हैं,
जिससे जनमत और अप्रूवल रेटिंग्स उनकी शक्ति का सबसे बड़ा पैमाना बन गई हैं।
बिल्कुल सही।
तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, अगर उन्हें समेटना हो तो मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रपति की शक्ति का ये विरोधाभास। क्या मैं सही हूँ?
बिल्कुल। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर समस्या हल कर देंगे, बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ तक कि तूफान भी।
हाँ,
लेकिन उनकी असली संवैधानिक शक्तियाँ खासकर घरेलू मामलों में बहुत सीमित हैं। नेल्सन इसे उम्मीदों और हकीकत का अंतर, एक्सपेक्टेशंस गैप कहते हैं, और यही जनता की निराशा का एक बड़ा कारण है।
और दूसरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये पद लगातार विकसित हुआ है, ये संविधान की किताब में बंद कोई चीज नहीं है।
सही, ये दूसरा मुख्य विषय है, विकास बना मूल इरादा। संस्थापकों ने जो पद बनाया था वो आज के पद से बिल्कुल अलग था। लिंकन, दोनों रूजवेल्ट जैसे नेताओं और गृह युद्ध, महामंदी और 9/11 जैसे संकटों ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया।
संविधान बनाने वाले आज के राष्ट्रपति पद को शायद ही पहचान पाते।
शायद, बिल्कुल नहीं।
और एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि नियम कानून अपनी जगह हैं, पर कुर्सी पर कौन बैठा है इससे बहुत फर्क पड़ता है।
ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। व्यक्तिगत और राजनीतिक अविभाज्य हैं, मतलब राष्ट्रपति का अपना स्वभाव, उनका स्टाइल, ये सब बहुत असर डालता है।
जैसे निक्सन का शक्की मिजाज या रीगन का संवाद कौशल।
बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि व्यक्तित्व ही नीति बन जाता है।
और चौथा, आज के दौर में शायद सबसे प्रासंगिक, ये बयानबाजी वाला राष्ट्रपति पद।
मतलब अब नेतृत्व का मतलब ही संवाद है।
हाँ, और ये एक दोधारी तलवार है। भाषणों, मीडिया और ट्विटर के जरिए सीधे मतदाताओं से जुड़ना राष्ट्रपति को बहुत शक्तिशाली बनाता है,
क्योंकि वो कांग्रेस को दरकिनार कर सकते हैं।
सही, लेकिन ये उन्हें अस्थिर जनमत का गुलाम भी बना देता है, जहां हर दिन की अप्रूवल रेटिंग उनकी सफलता तय करती है।
किताब में जरूर कुछ ऐसे विचार होंगे जो दिमाग में अटक जाते हैं। अगर कुछ मुख्य विचारों का सार साझा करना हो तो वो क्या होंगे? एक विचार जो इस पूरी कहानी की नींव है वो ये है, संस्थापकों ने राष्ट्रपति पद को एक तरह की रचनात्मक अस्पष्टता के साथ बनाया, जिससे इसे अप्रत्याशित राष्ट्रीय संकटों के समय विकसित होने और अनुकूलित होने की गुंजाइश मिली।
मतलब वो जो अस्पष्टता थी वो एक गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। ये वाकई एक अलग नजरिया है।
हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण विचार वही एक्सपेक्टेशंस गैप वाली बात है। आधुनिक राष्ट्रपति पद का मूल विरोधाभास अमेरिकी लोगों की अपेक्षाओं और संविधान द्वारा दी गई वास्तविक शक्तियों के बीच लगातार बढ़ती खाई है।
ये हमें समझाता है कि क्यों में ज्यादातर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल शुरू तो बहुत लोकप्रिय हीरो की तरह करते हैं, लेकिन खत्म होते होते उनकी रेटिंग्स गिर जाती हैं, क्योंकि वो उन सारी उम्मीदों पर खरे उतर ही नहीं सकते जो उनसे लगा ली जाती हैं।
बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो इन सबको एक साथ बांधता है, राष्ट्रपति पद एक ही समय में एक संस्था भी है और एक व्यक्ति भी। हम पद की शक्तियों का अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूल सकते कि इसकी दिशा अंततः ओवल ऑफिस में बैठे व्यक्ति के चरित्र, निर्णय और राजनीतिक कौशल से तय होती है।
ये एक बहुत संतुलित नजरिया है। नियम अपनी जगह हैं, लेकिन अंत में ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उन नियमों का इस्तेमाल करता है।
सही कहा।
तो इस सारी जानकारी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है? हम इस ज्ञान का क्या करें?
मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें एक ज्यादा सूचित और यथार्थवादी नागरिक बनाता है।
कैसे?
जब हम किसी भी नेता को, चाहे वो अमेरिका का हो या कहीं और का, बड़े बड़े वादे करते हुए सुनते हैं तो हमें पता होता है कि उन वादों को पूरा करने की राह में कितनी संस्थागत बाधाएं हैं। हम बहकावे में आसानी से नहीं आते।
ये राष्ट्रपति को अति मानवीकरण करने से भी बचाता है। मतलब हम उन्हें किसी देवता या राक्षस की तरह नहीं देखते।
बिल्कुल, हम उन्हें एक जटिल सिस्टम के अंदर काम करने वाले एक इंसान के रूप में देखते हैं। इससे हम किसी के प्रति अंधी भक्ति या अंधी नफरत से बचते हैं।
और शायद सबसे व्यवहारिक बात यह है कि जब हम खबरें देखते हैं, मान लीजिए खबर आती है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, या बजट को लेकर कांग्रेस से उनका झगड़ा चल रहा है,
या उन्होंने विदेश में सेना भेज दी है, तो अब हमें उस खबर के पीछे का पूरा संदर्भ पता होता है। हमें पता होता है कि वो कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पीछे के असली दांव पेच क्या हैं।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि अमरीकी राष्ट्रपति पद एक जीता जागता विरोधाभास है। ये एक ही समय में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है और हैरान करने वाली सीमाओं में बंधा हुआ भी।
हाँ, इसकी सफलता किसी एक चीज पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत कौशल, ऐतिहासिक परिस्थितियों और संस्थागत सीमाओं के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी होती है।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि राष्ट्रपति पद की कहानी असल में खुद अमेरिका की कहानी है। शक्ति के साथ उसका अजीब रिश्ता, संकट के समय उसकी प्रतिक्रिया और एक लोकतंत्र में एक नेता की सही भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर उसकी कभी न खत्म होने वाली बहस।
बिल्कुल, ये किताब सिर्फ एक पद के बारे में नहीं है बल्कि ये किसी भी लोकतंत्र में कार्यकारी शक्ति के स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्षित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।